दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आज पेश कर रहा हूं अशर नजमी की कहानी एक शानदार दिवाली। इसका संगीत दिया है सर्वेश सिंह ने और इसके निर्माता हैं येलो एंड रेड म्यूजिक। तो आइए सुनते हैं कहानी एक शानदार दिवाली। दिवाली की वो शाम भी क्या सर्द शाम थी। ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवाओं ने सूरज को भी बुझा दिया हो। धीरे धीरे शाम भी काली पड़ती चली जा रही थी, जैसे कोयले ठंडे होते हुए काले पड़ जाते हैं। ऐसे में जब शहर के अमीर और रईस लोग फायरप्लेस के सामने लेटे, गर्म शॉल ओढ़े, अपने बच्चों को दिवाली का आध्यात्मिक महत्व बता रहे थे, उसी समय एक छोटी सी बच्ची लड़खड़ाती, डगमगाती उस सड़क पर निकल आई जहां ये पॉश बिल्डिंग्स की कतारें थी। उसके सर पर सर्द हवाओं से बचने के लिए कोई मफलर नहीं था, पैरों में जूते भी नहीं थे। हां, जब वो घर से बाहर निकली थी तो चप्पल पहने हुए थी जो उसकी मां की थी। भला एक जवान औरत की चप्पल उस 7 साल की छोटी बच्ची के पैरों में कैसे समा सकती थी। फिर वो चप्पल उसे काटने भी लगी थी, उसके नन्हे नन्हे पैरों में छाले पड़ गए थे। चलो ठीक है, ठंडक से सुन पड़े शरीर को छालों का दर्द महसूस नहीं होता होगा, लेकिन बुरा हो उन आवारा और शरीर लड़कों का जो शहर के मेन रोड पर पटाखे फोड़ते गुजर रहे हैं। खूब धमाके, बहुत सारा धुआं। वो बच्ची उसी सड़क पर दिवाली के लिए रंग बिरंगी माचिस की डिबिया बेचा करती थी। एक शरीर लड़के ने जब उसके बिल्कुल पास चुपके से एक बम पटाखा रखकर फोड़ा तो वो सर पे पैर रखकर वहां से भाग गई, और भागते भागते उसकी एक चप्पल उसके पैरों से रास्ते में ही कहीं निकल गई। फिर वो इस पॉश इलाके में पहुंच गई। उड़ते हुए नरम बर्फ की फुहार ने उसके घुंघराले बालों को जैसे चमेली के सफेद फूलों से गूंथ दिया था। शायद उसे अपनी खोई हुई चप्पल के मिलने की उम्मीद बाकी थी, तभी वो दूसरे पैर की चप्पल अपने हाथ में उठाकर चलने लगी थी। आज तो किसी ने भी उससे एक माचिस भी नहीं खरीदी थी। सारी डिबियां उसकी कमर के साथ बंधी थैली में रखी हुई थी, और ये थैली उसे बर्फ की डलियों की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे बच्ची को इसकी परवाह नहीं थी। अचानक बच्ची के पास तरह तरह के पकवानों की खुशबू कहीं से उड़ती हुई पहुंची। उसे याद आया कि अरे, वो सुबह मुंह अंधेरे घर से निकली थी और अब शाम हो चुकी थी। उसके खाली पेट में जोर का दर्द उठा। बेचारी की हालत भूख से खराब होने लगी। वो सर्दी से कांपती, ठिठुरती, भूख से बिलबिलाती एक बंगले की दीवार से लगकर उकड़ू बैठ गई। बंगले की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की की दूसरी तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल नजर आ रहा था। इस डाइनिंग टेबल के चारों ओर जलते हुए दिए रखे थे और बीच में दिवाली के पकवान एक से बढ़कर एक, नारियल के लड्डू, खस्ता, कचौड़ी, गुजिया, शकरपारे, जलेबी, गुलाब जामुन, चकली, काजू कतली। आह, ये सब देख के तो भूख और ठंडी का एहसास और बढ़ गया था। वो अपनी जगह से थोड़ी खिसक कर कचरे के ढेर में बैठकर खुद को गर्म रखने की नाकाम कोशिश करने लगी। भला किसी पहाड़ी जगह पर नवंबर की बर्फीली हवाओं का मुकाबला इतना आसान होता है क्या? और फिर मुकाबला भी कैसा? एक तरफ सर्दी का ऐसा प्रकोप जिसने सूरज को भी कुहासे की चादर में लपेट दिया था, और वो दुनिया को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था, तो दूसरी तरफ एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जिसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर कुछ चीथड़े लटक रहे थे। उसने घर वापस जाने का सोचा। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने उसके बाप का कठोर चेहरा घूम गया। जब उसको पता चलेगा कि आज वो एक माचिस भी बेच नहीं पाई है तो वो उसको बहुत मारेगा। बच्ची सोचकर ही कांप उठी। फिर उस घर में रखा भी क्या है, वो भी तो इसी तरह ठंडा था, गीली दीवारें और टूटी हुई छत। जब सनसनाती हवा चिंघाड़ती हुई चलती तो उसकी हड्डियां तक बर्फ हो जाती। सर्दी ने उसकी उंगलियां भी सुन्न कर दी थी। अचानक उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर ये माचिस जलाई जाए तो शायद उसकी उंगलियां थोड़ी गर्म हो जाएं और दर्द कम हो जाए, कुछ देर के लिए ही सही। उसने अपने थैले से माचिस की एक टिबिया निकाली और दीवार के साथ उसका मसाला रगड़ा। माचिस की तीलियां जल उठी। तीलियों में जलती आग उसे कितना आनंद दे रही थी ये वो बच्ची ही जानती थी। वो जलती तीलियों पर अपना हाथ रख देती है, उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी आतिशदान के सामने बैठी हो। उसने अपने पैरों को जलती तीलियों के पास लाना चाहा, लेकिन अब तो वहां राख के ढेर में सिर्फ कुछ बुझते हुए शोले ही बचे थे। बच्ची ने माचिस की दूसरी टिबिया निकाली और उसे भी दीवार पर रगड़ा। जब दीवार पर रगड़ा तो वो भी जल उठी, मगर ये क्या, आग की परछाई जब दीवार पर पड़ी तो वो एक साफ शफाफ शीशे की तरह दिखाई देने लगी, जिसके पार भी देखा जा सकता हो। और उसने देखा कि एक कमरा है जिसमें एक सुंदर सी लकड़ी की मेज रखी है। उस मेज पर एक प्लेट में भुनी हुई मुर्गी रखी हुई थी, हरी और लाल चटनियों के साथ। फिर उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ कि उस मुर्गी ने प्लेट से छलांग लगाई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मगर आंखें धुंधला क्यों रही हैं? अब बच्ची के सामने सिर्फ दीवार थी, तीलियां बुझ चुकी थी। बच्ची ने तीसरी डिबिया निकाली और फिर से आग लगाई। एक बार फिर से दीवार पर परछाई उभरी। वो इस बार अनार से छूटती हुई फुलझड़ियों के शामियाने के नीचे खड़ी थी। वो कितना सुंदर दृश्य था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अमीरजादों को अनार और फुलझड़ियों से खेलते देखा था, लेकिन ये वाला ज्यादा सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमानों से सितारे बरस रहे हों। बच्ची ने हाथ बढ़ाकर उन सितारों को पकड़ना चाहा, लेकिन एक बार फिर सब कुछ धुंधला गया। तीलियां बुझ चुकी थीं। अचानक उसने आसमान पर एक टूटता हुआ तारा देखा। शायद कोई मर रहा है। उसकी दादी माँ ने उसको बताया था कि जब कोई मरने लगता है तो आसमान से एक तारा टूटकर जमीन पर गिरता है। घर में एक दादी ही तो थी जो उस नन्ही सी परी से प्यार करती थी, मगर अब वो मर चुकी थी। बच्ची ने एक बार फिर माचिस जलाई। एक बार फिर आग की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसे अपनी दादी दीवार के उस पार खड़ी नजर आई। वो उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी।
दादी माँ, दादी माँ!
बच्ची जोर से चिल्लाई,
मुझे भी अपने साथ ले चलो दादी माँ। देखो देखो, ये तीलियां बूझ गई हैं और तुम भी मुर्गी और अनार की फुलझड़ियों की तरह मुझसे रूठकर चली जाओगी।
इस डर से कि दादी रूठकर वापस न चली जाए, बच्ची ने अपने थैले से माचिस की सारी डिबिया निकालकर उन जलती हुई तीलियों में डाल दी। एक ऊंचा शोला उठा। दादी का चेहरा अपनी पोती को देखकर दमक रहा था। अब दादी उसके पास आई और उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर की ओर उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, बादलों के ऊपर, आसमानों के ऊपर, ऊपर और ऊपर। अब बच्ची को भूख नहीं लग रही थी, सर्दी भी नहीं लग रही थी, उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं। वो उड़ती उड़ती भगवान की गोद में पहुंच चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने बच्ची के गाल को चूमा, जो दीवार से टेक लगाए लगता था सो रही है। लाल लाल गाल और होठों पर एक मासूम मुस्कुराहट, लगता है बेचारी मर गई। कितने दुख की बात है, बेचारी दिवाली की रात ही मर गई। शायद ठंड से मर गई होगी, क्या पता भूख से मर गई हो। जितने मुंह उतनी बातें। वहां खड़े कुछ लोग उस बच्ची की अकड़ी हुई लाश पर खड़े समीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन बेचारों को कैसे मालूम होता कि मरती हुई बच्ची के चेहरे पर इस मुस्कुराहट का राज क्या है। भला वो कैसे जान सकते थे कि उसने अपनी दादी के साथ कितनी शानदार दिवाली मनाई है और कितने आसमानों की सैर की।